नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद इसराइल के लगातार हमलों में लेबनान में मृतकों की बढ़ती संख्या पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को देखते हुए मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है।
भारत ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना और देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। लेबनान में हमारा दूतावास भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
सरकार ने देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष सिंह ने ये जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति स्थिर है। इजरायली सेना और हिजबुल्ला ने लेबनान सीमा पर एक दूसरे पर हमले किए। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इसराइल के हमलों के जवाब में इजरायली क्षेत्रों पर हमले किए। ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम लेबनान पर लागू होना था। वहीं इसराइल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम समझौते में शामिल नहीं है। इस बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य कल भी लगभग बंद रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि वो युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से एक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ 6 सप्ताह से चल रहे संघर्ष के सबसे अनिच्छुक समर्थक थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने समाधान खोजने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा है। वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के साथ वार्ता करने के लिए रवाना हो गए हैं। वेंस ने कहा है कि ट्रंप ने हमें वार्ता के संचालन के संबंध में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वार्ता दोनों पक्षों के लिए निर्णायक होगी। वेंस के साथ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी आ रहे हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। एडीबी के एशियाई विकास आउटलुक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, आसान वित्त पोषण स्थितियों और भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कमी की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत में विकास मजबूत रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा स्वगणना सुविधा के माध्यम से डिजिटल रूप से अपना विवरण दर्ज कराया। कार्यक्रम के तहत राज्य में घरों का सूचीकरण और गणना का कार्य शुरू हो गया है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत पहली बार नागरिकों को जनगणना अधिकारी के घर आने से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्वगणना की यह सुविधा 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी और इसके बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 84 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 13,39,00,000 हो गई। निर्वाचन आयोग ने कल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। लोग आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अपने नाम की जांच कर सकते हैं। भारत की मीनाक्षी गोयल ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। दूसरी ओर मोनिका ने 65 किलोग्राम और हर्षिता ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक के मुकाबले में सुजीत कलकल का सामना उज्बेकिस्तान के उमित जोन जेलोलोव से होगा। अभिमन्यु वंडवाल ने सेमीफाइनल में किर्गिस्तान के मौजूदा चैंपियन एनार्जर अकमा तालियेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। स्वर्ण पदक के लिए उनका मुकाबला मंगोलिया के तोमोर ओचिरिन तुलगा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।